नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठक में शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में फरवरी 2026 से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया शुरू होगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित नारसन प्रवेश द्वार का सौंदर्यकरण करेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित। और अब समाचार विस्तार से। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार से 3 दिवसीय यात्रा पर जोहान्सबर्ग में हैं। यह शिखर सम्मेलन पहली बार अफ्रीकी धरती पर आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक गर्मजोशीपूर्ण और रचनात्मक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रामाफोसा और दक्षिण अफ्रीका को G20 की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई दी। चर्चा व्यापार, निवेश, खनन, महत्वपूर्ण खनिजों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित रही। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में फरवरी 2026 से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बूथ प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे मतदाता पुनरीक्षण को गंभीरता से लें और सभी 11,733 पोलिंग बूथों पर एक एक प्रतिनिधि नियुक्त करें। देहरादून में हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं से गृह सचिव शैलेश बगोली ने मुलाकात की और उनकी सभी प्रमुख मांगों पर चर्चा कर सरकार की ओर से समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान गृह सचिव ने कहा कि कोर्ट परिसर में आर्किटेक्ट की मदद से मास्टर प्लान के तहत नए चैम्बरों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेगी, जबकि विकास शुल्क को लेकर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा।
जो आपकी कुछ मुख्य मांगे हैं, एक तो आप लोगों को जो जिला जजी में 5 बीघा जमीन मिली हुई है अपने चैम्बर्स बनाने के लिए, उन्होंने कहा था कि उसके अतिरिक्त भी हमें आवश्यकता पड़ेगी चैम्बर्स के लिए, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एक आश्वस्त किया है कि एक पूरे जो एरिया है यहाँ पर उसकी हम लोग एक अच्छे से मास्टर प्लानिंग कर लेंगे, कोई अच्छा आर्किटेक्ट हायर करके ये काम किया जाएगा, एक समिति बनाई जाएगी उसके पूरा देखने के लिए, जिसमें 3-4 मेंबर हमारे जिला प्रशासन से होंगे और 3-4 मेंबर माननीय जो अधिवक्तागण हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर होंगे।
हल्द्वानी संभाग में वस्तु एवं सेवा कर विभाग GST की विशेष अनुसंधान शाखा ने 2 अलग अलग मामलों में एक पैकेजिंग इकाई और एक रिजॉर्ट पर कार्रवाई कर कुल 68 लाख रुपए से अधिक की धनराशि राजकोष में जमा कराई। विशेष अनुसंधान शाखा की उपायुक्त हेमलता शुक्ला ने आकाशवाणी को यह जानकारी दी। सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में आज तहसील विकासनगर की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। विकासनगर तहसील प्रशासन की टीम ने चिन्हित किए गए 111 अवैध कब्जों और उस पर किए गए निर्माणों को बुलडोजर की मदद से कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नाबार्ड योजना के तहत स्थापित पॉली हाउस के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए देहरादून जिले के चयनित 28 कृषकों के दल को गोविंद बल्लभ पंतनगर विश्वविद्यालय के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के माध्यम से प्रदेश में 50,000 पॉली हाउस स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में लौटे प्रवासी सबसे अधिक कृषि और बागवानी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। ऐसे में सरकार उन्हें कृषि और बागवानी आधारित आजीविका से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
हम हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना जो नाबार्ड के सहयोग से चल रही है, 3 साल के अंदर 50,000 पॉली हाउसेस लगाने का लक्ष्य हमने रखा है, क्योंकि आज इसके माध्यम से हम अपनी आर्थिकी को मजबूत करते हैं। जहां सीजन में गोभी 4 रुपए 5 किलो बिक जाती है, बेमौसमी मौसम में 150 रुपए तक बिक जाती है, इसके माध्यम से हम किसानों की आय को दुगुनी करने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार कर सकते हैं। और समय समय पर हम अपने किसानों को ट्रेन करने के लिए पंतनगर भेजते रहते हैं, और आज इसी कड़ी में यहाँ के 28 किसानों को 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए हमने पंतनगर भेजा है, और वहाँ से आने के बाद एक मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ काम करेंगे और किसानों को भी इससे जोड़ेंगे।
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित नारसन प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण करेगा। एचआरडीए ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त निरीक्षण कर सौंदर्यीकरण की योजना तैयार की है। योजना के तहत प्रवेश द्वार के दोनों ओर 1 किलोमीटर तक आकर्षक फूलों की पौध लगाई जाएगी और पौधारोपण भी किया जाएगा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सोनिका ने बताया कि प्रवेश द्वार के दोनों ओर करीब 1 किलोमीटर तक के एरिया में आकर्षक फूलों की पौध लगाई जाएगी। इसके अलावा अन्य आकर्षक डिस्प्ले भी लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में खाली पड़े चिकित्सकों के पदों को जल्द भरा जाएगा, साथ ही सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्तियां भी की जाएंगी। उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने हरिद्वार में राज्य स्तरीय सम्मेलन में ये जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी जिले में डॉक्टरों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि अभी तक 1400 सीएचओ की नियुक्ति की जा चुकी है और स्वास्थ्य विभाग में लगभग 9000 कार्मिकों को भी नियुक्त किया गया है।
अभी 287 डॉक्टरों का भी हमने अध्याचन भेजा है, बहुत जल्दी हम डॉक्टरों की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं। हमारे हरिद्वार के सीएमओ साहब ने हमसे एक बाल रोग विशेषज्ञ और 2 गायनोकोलॉजिस्ट मांगे थे, वो भी हमने दे दिए। अभी हम 287 डॉक्टरों की जैसे नियुक्ति होगी उसमें से 30 डॉक्टर हरिद्वार को और देने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ डॉक्टर पूरे हो जाएं, हमारे कम से कम लोगों को जो है अपने हॉस्पिटल से ज्यादा दूसरी जगह रेफर होना पड़े।
बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत पंच पूजाओं के तीसरे दिन खड़क पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद कर दिया गया है। इससे पहले बीते दिन आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कल 24 नवंबर को मां लक्ष्मी जी को कड़ाई भोग चढ़ाया जाएगा और फिर 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने कहा कि मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज 4वां दिन है। इस मंच पर फिल्म निर्माता, रचनाकार और सिने प्रेमी कहानियों, जुनून और अविस्मरणीय पलों को साझा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने आज पणजी की कला अकादमी में मास्टर क्लास ली। उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और अपने आसपास हमेशा प्रेरक तथा भावनाओं से भरपूर माहौल बनाने पर जोर दिया। इस बीच इफ्फी में शानदार फिल्मों का दौर जारी है। आज का दिन देशभक्त के जोश के साथ शुरू हुआ। फिल्म मेकर डिम्पल दुगर की फिल्म लोकमाता अहिल्याबाई फेस्टिवल में दिखाई गई। मध्य प्रदेश सरकार ने अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाने के लिए यह फिल्म बनाई है। आज दिखाई जा रही फिल्मों में मुख्य रूप से चंबल भी शामिल है। इसके अलावा असमिया फिल्म सीकर के फिल्म निर्माताओं ने विशेष बातचीत के दौरान क्षेत्रीय फिल्मों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठक में शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में फरवरी 2026 से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया शुरू होगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित नारसन प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।